आज हम पांचवें स्कंद के 26वें अध्याय, जो सबसे फेमस अध्याय है, सारे नरकों का वर्णन है इसमें, उसके 31, 32, 33, 34, 35 चार पांच श्लोक करने वाले हैं, जिनमें क्योंकि कोई पॉपर्ट नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ, इसलिए कई सारे श्लोक हैं। आप लोग मेरे पीछे बोलने की कोशिश कीजिएगा। ये पद नहीं है, गद है, इसकी कोई ट्यून नहीं बनेगी। ये त्विव पुरुषा पुरुष मेदेन यजन्ते याश्रच स्त्रियो नृपशुन्खान्दन्ति त्वामश्च ते पशव इव निहित यम सदने यातयन्तो रक्षो गणा सैनिका इव स्वदिति नावदया। स्वप्रिग्वन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा यदेह पुरुषादः। इस श्लोक का वर्ड फॉर वर्ड भी कर लेते हैं। ये जो व्यक्ति तू लेकिन यह इस संसार में वह निसंदेह पुरुषः व्यक्ति पुरुष मेधेन नरबली द्वारा यजन्ते आराधना देवी काली या भद्र काली की करते हैं, या जो च तथा स्त्रियः स्त्रियां नृपशुन बलि चढ़ाए जाने वाले मनुष्य खादंती खाते हैं तान उनको च तथा ते वे पशवः इव पशुओं के सदृश निहता मारे जाकर यम सदने यमराज के धाम में यातयन्तः दंड देते हुए रक्ष गण राक्षस होकर सैनिका मानने वाले इव इद्रश स्वाधीन स्वधीन स्वधीतिना स्वधीतिना तलवार से अवदाय खंड खंड करके अस्रक रक्त पीबंती पीते हैं नृत्यंती नाचते हैं च तथा गायंती गाते हैं च भी हृष्यमाणा प्रसन्न होकर यथा जिस प्रकार इह इस श्लोक में पुरुष अदह मनुष्य भक्षी अनुवाद। इस संसार में ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नरबलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वाले वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नरभक्षकों ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। प्लीज रिपीट। इस संसार में ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नरबलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नरभक्षकों ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामायं ददाति स्वपदांतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू। हरे कृष्ण। यहां पे 26वें अध्याय में कितने तरीके के नरकों का विवरण दिया गया है? 28 तरह के नरकों का विवरण दिया गया है। और ये 28 तरीके के नरक या सारे नरक या नरक लोक कहाँ पाए जाते हैं? ओ, मैंने सुना गरुड़ पुराण में। हाँ, गरुड़ पुराण में भी पाए जाते हैं, लेकिन गर्भोदक ओशन के नीचे, ऊपर और पाताल से नीचे। तो वहां पे पितृलोक भी है, यमलोक भी है। यम भी ऐसा बताया कि पितृलोक में ही रहते हैं, लेकिन नरक यमलोक या पितृलोक नहीं है, नरक उससे भी एक नीचे है। और सबसे नीचे गर्भोदक सागर वो स्थान है जहां पे हिरण्याक्ष आप सबने हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने वहां पे जाकर क्या किया था, पृथ्वी को छुपा दिया था। कई वक्त लोग ऐसा समझ नहीं पाते कि ये पृथ्वी इसी पृथ्वी के समुद्र में कैसे डूब गई। वेल, प्रलय के दिन यही पृथ्वी इसी पृथ्वी के समुद्र में डूब जाने वाली भी है, क्योंकि पानी का तो इतना अकाल है, सब जगह हम सुनते हैं पानी की कमी है, लेकिन इतना पानी कहां से आएगा कि सारी पृथ्वी वो जल में भग्न हो जाएगी। कहां से आएगा इतना सारा पानी? उसके लिए बहुत सारा पानी हिमालय पर्वत के ऊपर है, वो सारा पानी, सारा बर्फ, सारे ग्लेशियर अगर जो जल बन के सब नीचे आ जाएं, सारा नॉर्थ पोल बहुत बड़े बड़े एरियाज में केवल बर्फ के पहाड़ हैं, वो सारा जल उनका क्या होगा, वो जल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नीचे अंटार्कटिक में भी पूरी तरह से बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब, ये सारी बर्फ जिस दिन पिघल गई, ये साइंटिस्ट लोगों का एस्टिमेट है कि समुद्र का लेवल कम से कम 9 मीटर ऊपर चला जाएगा, 9 मीटर लगभग सारी आबादी उसमें आ जाएगी। जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं खाली वो ही बचेंगे, लेकिन वो भी जाएंगे कहाँ पहाड़ से उतर के। लेकिन अब हमारे शास्त्रों के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार, प्रलय के समय सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, और वो कोई मीठा जल नहीं है, वो सारा खारा जल है। जितनी भी नदियां आप देखते हो सारे संसार में, कितनी नदियां जा जाके मीठा जल समुद्र के जल में मिक्स करती रहती हैं हर समय, और समुद्र का जल कुछ कम खारा हो रहा है उसके बाद वो सारी नदियों के सारे जल को एकदम से उतना ही खारा कर देता है। तो उस हिसाब से ये सारे बर्फों के पहाड़ जब पिघल के नीचे आएंगे तो ये सब उसी तरह से नमकीन समुद्र में हो जाएंगे। तो यहां पे बताया गया है कि, या सॉरी, हम बता रहे थे कि हिरण्याक्ष जो एरिया है जहां पे पृथ्वी रोटेट होती है, घूमती है, जो कुछ भी उसका ऑर्बिट है, उसमें से निकाल के नीचे गर्भोदक कोशन में जाके छुपा आया था। और कैसे कोई व्यक्ति पूरी की पूरी पृथ्वी को उठा सकता है? लोग तो ये शक करते हैं कि प्रभु जी, क्या वास्तव में आपको लगता है भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया होगा? लोग तो इतनी बात को क्वेश्चन करते हैं कि भगवान कृष्ण ने केवल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया होगा, ये तो हिरण्याक्ष तो सारे के सारे पृथ्वी को ही उठा लिया, सारे के सारे पृथ्वी तो गोवर्धन पर्वत का वजन और पृथ्वी का वजन मटेरियली देखा जाए भौतिक रूप में तो कुछ भी कंपैरिजन नहीं है। जैसे कि एक पूरा बोरा सरसों के दानों का, उससे एक सरसों का दाना हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब लोग ये नहीं मानते कि भगवान कृष्ण ने क्या रियली उठा लिया होगा सारा गोवर्धन पर्वत, वो इस बात को कैसे मानेंगे कि हिरण्याक्ष ने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही उठा के ऑर्बिट में से निकल के नीचे गर्भोदक शायद गर्भोदक ओशन में गर्भोदक सागर में छुपाया होगा। वो उसको हम ऐसे समझते हैं तीसरे स्कंद में बताया गया उसका साइज। हिरण्याक्ष का साइज, किसी को पता है हिरण्याक्ष कितना बड़ा था? उसका साइज बताया गया है क्या? ऐसा बताया गया कि ऑल द वे सत्यलोक से शुरू हो रहा है। नीचे तो बताया ही नहीं, नीचे कहां पे एंड हो रहा है? ऑल द वे सत्यलोक से शुरू हो रहा है, मतलब कि जिस तरीके की चीज है उस तरीके का यूनिट मेजरमेंट क्या कहते हैं उसको मानक यूज किया जाता है। जैसे ये डब्बा है, इसको कोई मीटर में नहीं बताएगा आपको, किलोमीटर में नहीं बताएगा, इंचेस में बताएगा, ज्यादा फुट में बताएगा। और यहां से दिल्ली की दूरी है तो कोई आपको फुट नहीं बताएगा, किलोमीटर बताएगा। तो जिस तरह से दूरी होती है, जिस तरह की चीज आप नाप रहे हो, उस तरीके का मानक यूनिट यूज की जाती है। तो हिरण्याक्ष के लिए यूनिट यूज हो रही है पूरा का पूरा सत्यलोक के सत्यलोक से शुरू होता है उसका सर। कोई चीज का यूनिट ही इतना बड़ा है कि सत्यलोक पे जाके उसका सर लगता है इस ब्रह्मांड में, तो पैर कहीं भी लगे वो तो महाभयंकर है। उसके लिए एक पृथ्वी को उठाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी सत्यलोक से छोटी, बहुत छोटी बताई गई है। जैसे तुलसीदास जी की रामायण में कुंभकर्ण का साइज नहीं बताया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कुंभकर्ण का साइज बताया है। किसको मालूम है कुंभकर्ण का साइज? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बताया, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्किप कर दिया, बताया ही नहीं। उनका साइज बताया 200 मीटर, फुट नहीं, 200 मीटर। 200 मीटर का मतलब है 600 फुट। एक जो आप लोग में से कोई जिसको कहते हैं लंबा है वो करीब 6 फुट का बनेगा उसके जैसे 100 को एक के सर पे एक खड़ा कर दो तो एक कुंभकर्ण बनेगा। जब सुबह को 6 महीने सोने के बाद एक दिन कुंभकर्ण उठते थे, आप उस दिन के उठने के बारे में जानते हो जिस दिन उसको जबरदस्ती उठाया गया था कि भाई यहां राम लक्ष्मण ने हमला कर दिया है, वानरों ने ईंट से ईंट बजा दिए, अब उठो जाके थोड़ा रक्षा करो लंका की। उसके अलावा भी वो 6 महीने के बाद एक दिन उठता था। और उसके दो लड़के थे कुंभ और निकुंभ, तो वो सुबह को जैसे आपने देखा वो खूब खाता पीता था क्योंकि 6 महीने के बाद बेचारा एक बार खा रहा है और वैसे भी इतना विशाल काय है उसको भी मेंटेन करना है और 6 महीने तक खाया भी नहीं, तो दोनों के हिसाब से अच्छी तरह से खा के वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। जपमाला पता नहीं लेके जाता था कि नहीं, लेकिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था कि अब थोड़ा इतना खाया है तो थोड़ा सा हजम भी कर लूं। उसके खाने में एक टाइम के खाने में सैकड़ों के हिसाब से हिरण भैंसे इस हिसाब से और सैकड़ों घड़ों के हिसाब से जानवरों का खून और ये सब चीज वो खाते थे। और जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाए तो कुंभ और निकुंभ की ये इच्छा रहती थी हम भी अपने पिताजी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। आज ही तो मिल रहे हैं, 6 महीने बाद फिर मिलेंगे तो आज स्कूल की भी छुट्टी और सब कुछ, आज का दिन तो पिताजी के साथ ही बिताएंगे। तो कहां कुंभकर्ण और कहां वो बच्चे। हमारे बच्चे तो चलना सीखते तभी हमारी उंगली पकड़ने लायक तो हो जाते हैं। अब ये बच्चे तो उंगली नहीं पकड़ सकते अपने पिताजी की, तो कान में अपने एक को इधर और एक को इधर आराम चेयर में दोनों को बैठा लेते, तुम लोग यहां बैठो, वॉक मैं कर लूंगा। तो इस तरीके से कुंभकर्ण का साइज था। अब उसके रहने के लिए उसी हिसाब से आपको महल चाहिए, इसलिए उसका महल करीब 100-150 मीटर नीचे की तरफ बनाया गया था, जिससे कि उसका महल अगर पूरा ऊपर बना दिया तो अब रावण का महल, क्योंकि रावण राजा है, बड़ा भाई है, उससे भी ऊंचा बनाना पड़ेगा। कहां जाओगे, इतना स्वर्ग पहुंच जाओगे। इसलिए खड्डा करके 100-150 मीटर नीचे कुंभकर्ण का महल बनाया जाता, तो ऊपर जितना निकलता वो उसका रावण के महल से थोड़ा सा नीचे रहता। तो शास्त्रों में ऐसी चीज बताई गई है जो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए वो रिपीट भी नहीं करते। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ चीजें तुलसीदास जी ने वाल्मीकि की रामायण से रिपीट नहीं की, जबकि राम वाल्मीकि की रामायण छोटी है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस तो और बड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ चीजें रिपीट नहीं की क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आई। 200 मीटर बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसा है तो है। अब यहां पे बताया गया कि इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को नर बलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसा उदाहरण यहां पे कभी किसी ने सुना है? नरबलि अभी भी कहीं होती हो? नरबलि ऑफ द इंग्लिश वो कहां गए प्रभु जी? वो प्रभु जी चले गए जो खोलते हैं। इसी पांचवें स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है, या भरत महाराज की। ये पांचवा स्कंद महाराज प्रियव्रत की कथा से शुरू होता है। प्रियव्रत किसके पुत्र हैं? मनु के पुत्र प्रियव्रत से ये शुरू होता है, और अगले अध्याय में अग्निद्रा जो प्रियव्रत के पुत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। उनके पुत्र हुए नाभि और मेरु देवी के संतान नहीं थे, उन्होंने पूजा की स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए उनके यज्ञ वगैरह से, और उन्हें ऋषभ देव के होने का वरदान दिया गया। ऋषभदेव चौथे अध्याय में ऋषभदेव के भगवान के लक्षण बताए गए हैं, और पांचवें अध्याय में ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को क्या उपदेश दिया ये बताया गया है। छठे में ऋषभदेव जी के कार्यकलाप, और ऋषभदेव जी के जो पुत्र हैं उसमें सबसे बड़े पुत्र हैं भरत महाराज। ये भरत महाराज वो भरत महाराज हैं जिनके नाम पे इस देश का नाम आज भी भारत माना जाता है। वो ये भरत महाराज हैं। भरत खंड, खंडों में, भूमंडल को खंडों में डिवाइड कर दिया गया उसमें से, या जम्बू द्वीप को, तो उसमें से जो अलग अलग खंड है उसमें से भरत खंड है जो भरत महाराज को ऋषभदेव ने दिया था राज्य करने के लिए। और सातवें अध्याय में भरत महाराज के बारे में बताया गया है, नौवें अध्याय में जड़ भरत की कथा आती है। जड़ भरत वो भक्त हैं जिनको नरबलि के लिए उठा लिया गया था, उनको नरबलि के लिए भीलों ने उठा लिया था। ज्यादातर भील जो अनसिविलाइज्ड हैं, अपने ही तरीके के काम करते हैं, वो ही नरबलि करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम लोग नर हैं और वो कुछ और हैं। तो जो वो हैं वो अपनों की बलि नहीं देते, हमारी देते हैं। वास्तव में वो ठीक भी हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्य योनि है। तो जो भील हैं वो अपनी ही योनि है। 4 लाख मनुष्य योनियों में आएंगे, लेकिन वो एक्सैक्टली हमारी योनि नहीं है। 4 लाख योनियों में से हम लोग नीचे से 10, 12, 15 पे कहीं ना कहीं एंड अप होते हैं, और 4 लाख मनुष्य योनियों में सबसे ऊपर टॉप पे ब्रह्मा जी के बनाए हुए सब देवी देवता लोग आते हैं। देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, ये टॉप के कई सारे प्लेसेस ले लेते हैं। उसके बाद जो राक्षस हैं वो भी लगभग वहाँ टॉप पे हैं। इसलिए हमेशा आपने सुना होगा रामायण में रावण कहता था, ये राम लक्ष्मण पृथ्वी पे रेंगने वाले कीड़े हैं, क्योंकि हम जो नर हैं ना हमें उड़ना आता है, ना हमें प्रॉपरली जल में रहना आता है, बहुत कुछ बहुत लिमिटेड हैं, अर्थ पे ही रहते हैं, अर्थ पे ही चलते हैं। तो इस वजह से हमें लेस एडवांस्ड माना जाता है। कोई भी नर किसी भी राक्षस से युद्ध करने का सोच भी नहीं सकता, और कोई राक्षस किसी भी नर को या हमारे जैसे 100-200 को भी कुछ नहीं मानता। हमारे जैसे 10-15-20 भी किसी राक्षस के ऊपर हैवी होने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा है। वानरों ने राक्षसों को कैसे हैंडल कर लिया, 400-500 वानर भी एक ही राक्षस पे टूट पड़ते थे, क्योंकि इनकी सेना अनलिमिटेड थी। राक्षस भी बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी गिनती के थे, सबके नंबर थे। वानरों की सेना असंख्य थी। तो जितने साइज का जो राक्षस है उसके हिसाब से बहुत सारे वानर उसको जकड़ लेते थे, तो उसको ओवरपावर कर पाते थे। नहीं तो 1-2-4 तो ऐसे ही इनमें से कोई भी राक्षस की क्षमता इतनी तो थी कि इनमें से 2-4-5 वानरों को तो पकड़ के एक साथ में वैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए खा जाए। लेकिन फिर भी वो लड़ते थे उनसे। तो यहां पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि क्या हुआ जब काली के सामने भीलों ने महाराज भरत के अगले जन्म जड़ भरत के रूप में बलि देने की कोशिश की। भद्रकाली के सामने या काली के सामने नरबलि दी जाती है, नरबलि या कोई भी बलि, ये वैदिक सिस्टम है कि किसी जानवर की बलि दी जा सकती है। क्यों और कैसे? ऐसे व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल अपनी जीवा पे कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल मजबूर है, उसको कोई जानवर को मार के खाना ही है, तो वैदिक इंजंक्शन ये बताया गया है कि ऐसे ही जानवर को मार के नहीं खा ले, उसको पहले कोई मेल गोट, मतलब के बकरा, सॉरी कोई मेरे से कह रहा है कुछ हो, और अमावस्या की रात हो और शहर से बाहर काली के मंदिर होते हैं, वहां काली के मंदिर में ले जाओ उस जानवर को और उस जानवर के कान में एक मंत्र बोलना होता है। क्या मंत्र बोलना होता है? ये संस्कृत का मंत्र है, हिंदी में उसको कहते हैं कि माय डियर जानवर, जो कुछ भी आप हो, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी जीवा पे नियंत्रण नहीं रख सकता हूं, इसलिए मैं आपको इस जीवन में मार के खाने वाला हूं, लेकिन अगले जीवन में आप मुझे मार के खा लेना। मैं आपका जीवन आपसे चुरा नहीं रहा, छीन नहीं रहा, उधार दे रहा हूं और उधार मैं चुकाऊंगा। उसके लिए साक्षी ये देवी खड़ी है, ये भद्रकाली खड़ी है। लोग ऐसा कहते हैं कि भद्रकाली बलि से प्रसन्न होती है, नहीं, भद्रकाली मां है। मां कभी प्रसन्न नहीं होती, किसी भी मां के पुत्र को उसके सामने अगर आप काटोगे, किसी मां को प्रसन्नता नहीं होती। ये भ्रांति है कि देवी को प्रसन्नता होती है आप अगर उसको बलि दो, नहीं, देवी को प्रसन्नता होती है, क्या होती है, कि आपने वो मंत्र उसके कान में बोला है कि आप इसका जीवन चुरा नहीं रहे, बोरो कर रहे हो, और मैं उसकी साक्षी हूं, कल को तुझे इसका जीवन वापस करना है, अपना जीवन देके, और नहीं, और उस समय मना किया तो ये रहा मेरा फरसा और ये रही मुंडमाला, तेरा इस फरसे से निकाल के मुंड इस मुंडमाला में पिरो लूंगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो बाद में मना करते हैं, उनकी मुंडमाला में पहनती हूं, तो वो जो मुंडमाला है वो उन लोगों की है जो बाद में आना कहानी करते, नहीं 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 मैंने तो नहीं मारा था इस बकरे को, मैंने तो नहीं दिया वचन। अच्छा, नहीं दिया, ये ले तेरा न्याय है, मैं स्वयं कर दूंगी, यमराज तो बाद में करेंगे। तो जड़ भरत को जब बलि के लिए तैयार कर लिया और बलि देने लगे तो काली मां को दिख गया, माय गॉड, ये तो विष्णु का भक्त है। मेरे सामने एक तो नर बलि, ऊपर से विष्णु का भक्त, उसको मार के ये लोग मेरे सामने बलि चढ़ा के मुझे प्रसन्न करना चाह रहे हैं। तो जितने वो अस्त्र शस्त्र लेके खड़ी हुई दिखती है भद्रकाली, वो केवल दिखाने के नहीं है, वो उनको यूज करने भी आते हैं। तो जब बिल्कुल तैयार हो गए लोग जड़ भरत की बलि देने के लिए, तो माता पूरी तरह से एक्शन में आ गई और अल्टर से बाहर आ गई, सारे अपने अस्त्र शस्त्र लेके इन भीलों पे टूट पड़ी कि तुम्हें इसकी बलि देनी है, मैं इसकी छोड़ तुम्हारी अपनी बलि लेने के लिए तैयार हूं, क्यों नहीं अपनी दे दो। क्योंकि बलि एक तरह से सैक्रिफाइस है, कैसे कहते हैं हिंदी में, कुर्बानी, ये तो उर्दू हुई, कुर्बानी हिंदी में जैसे भी कहते हैं, कि हम इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइस, कि हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे, भगवान के चरणों में कुछ आता, त्याग, एक तरह से त्याग, बलिदान। तो ये बलिदान या त्याग किया जा रहा है, तो भैया किसी और के जीवन का दान और बलिदान करने से और त्याग करने से अच्छा है, उससे भी बड़ा त्याग करो, अपना करो ना, उससे बड़ा क्या हो सकता है कि मैंने अपनाई। ये जो इस्लाम में बकरा ईद मनाई जाती है उसका भी यही पर्पज होता है कि वो बकरे को कुर्बानी देते हैं, उसकी त्याग करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। कुर्बानी दी जा रही है, ये सिस्टम आता है किसी व्यक्ति ने इन्हीं के सिस्टम में अपने पुत्र की दी थी कुर्बानी, अब उसकी देने के बजाय ये कहीं से बाजार से बकरा लाके उसको अपना पुत्र कह के उसकी कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन ये लोग भी उसके कान में मंत्र बोलते हैं बकरा ईद पे, उस बकरे को मारने से पहले एक मंत्र बोला जाता है। वो मंत्र जो है वो इनको समझ में नहीं आता क्योंकि वो अरबिक लैंग्वेज में है, अरबिक लैंग्वेज। तो वो मंत्र जो हमारा संस्कृत का मंत्र वेदों में है, संस्कृत से डायरेक्ट ट्रांसलेशन इनटू अरबिक है, तो वापस जब उसको हिंदी में लाएंगे सेम मंत्र है, कोई अंतर नहीं है, सेम मंत्र है। मैं अपनी जीवा पे नियंत्रण नहीं रख सकता, हे पशु आप मुझे माफ करना, मैं आपका जीवन इस बार ले रहा हूं, अगली बार आप मेरा ले लेना। और अगर जो आप वो मंत्र नहीं बोलोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होने वाला, तो फिर भी होगा, लेकिन लेने से, जैसे यहां प्रभु जी बैठे हैं, इनके वहां पर्स रखा है उसमें 500 रुपए मुझे जरूरत है, मैं वैसे ही ले लूं और चला जाऊं, मुझे जरूरत थी 500 रुपए इनके पास थे मैं ले गया, या मैं ले लूं, मुझे पता है भागवतम क्लास में अच्छी तरह से सोते हैं और वहां पे नोट लिख के रख जाऊं कि प्रभु जी मैंने ले लिया आपके, मैं जब होंगे तो वापस कर दूंगा। तो जब वो उठेंगे देखेंगे भागवतम क्लास खत्म हो गई, मेरे 500 रुपए चले गए लेकिन यहां नोट लिखा रखा है कि अक्रूर ले गया मेरे 500, लेकिन नोट लिख के छोड़ के गया है कि मैं वापस कर दूंगा। तो कौन सा अच्छा है, नोट लिख के छोड़ के जाना या वैसे ही ले जाना? वैसे तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ही ले जाने से तो अच्छा है नोट लिख के छोड़ गए। तो ये जो सिस्टम है बलि का, मंत्र बोलने का, इस्लाम में भी और वेदों में भी, जो वो इस्लाम में जो वो लोग कर रहे वो वही है जो वेदों में बताया गया। काली को नहीं रखते, लेकिन वैसे भी काली हर जगह प्रेजेंट है, कोई ऐसी बात नहीं है कि काली, हु इज काली, कौन जानता है काली कौन है? दुर्गा का ही काली स्वरूप, सो दुर्गा ही काली, काली जब दुर्गा जब काली के स्वरूप में आ जाए तो उसको भद्रकाली या काली कहा जाता है, वो दुर्गा ही है। दुर्गा कौन है? मया दक्षेण प्रकृति सोयते से चराचरम, इज द मटेरियल नेचर, जो प्राकृतिक क्या कहते हैं प्रकृति, और प्रकृति कहां नहीं है? इस संसार में कोई स्थान है जहां प्रकृति नहीं है? तो उस तरह से दुर्गा भद्रकाली काली सब जगह है। अगर जो मूर्तिमान रूप में खड़ी है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं खड़ी तो उसका मतलब ये नहीं कि अब हम जो मर्जी करें, वो तो है नहीं, चले गए थानेदार अब डर काहे का, ऐसा कुछ नहीं, थानेदार जा सकते, काली नहीं जाती, मदर नेचर नहीं जाती। हमारे अंदर जो हृदय में निवास करने वाले परमात्मा है वो कहीं नहीं जाते, और भी 14 गवाह बताएं, ज्यादातर कितने 12 गवाह बताएं, मैंने 14 में 12 गवाह के अलावा कृष्ण बलराम जोड़ दिए थे, 12 गवाह बताए गए हैं, जितने भी वो हैं ज्यादातर सब मटेरियल नेचर से कनेक्टेड है। तो ये सब गवाह आपका बलि दिया हुआ या प्रॉपरली बलि दिया हुआ या वैसे ही मारा हुआ, सबका हिसाब रख रहे हैं और सबका हिसाब हमें देना पड़ेगा। तो भद्रकाली किसी की बलि से प्रसन्न नहीं है, लेकिन वो उसको रोकती भी नहीं ज्यादातर केसेस में, अनलेस के कोई भक्त की ही बलि देने यहां पे आ जाए। भक्त की तो रोक ली कि ये तो विष्णु का भक्त है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, किसी भी तरह से ये बलि देने योग्य नहीं है, चाहे वो हां भी करे कि हां मुझे बलि देनी है, मार दो मुझे, कोई बात नहीं। तो भी काली ने वो बलि को रोक लिया। काली वो बलि को स्वीकार नहीं करती, वो आपके दिए हुए वचन को स्वीकार करती है। अच्छा ठीक है, तू कह रहा है कि कल को अपनी जान देगा इसके लिए, ठीक है वो हमने लिख लिया, और अगर जो मना किया तो ये देख ले मेरी मुंडमाला और ये फरसा, ये सब तेरे लिए सुरक्षित हैं, चिंता नहीं करना, तेरा न्याय जरूर होगा, चाहे यमराज करे नहीं करे, मैं तो हूं। मैं न्याय के लिए किसी को यमराज के पास नहीं भेजती, मैं खुद पूरा न्याय करके आती हूं। तो यहां पे ऐसा बताया गया, जो पुरुष तथा स्त्रियां नरबलि चढ़ाकर उसके शरीर का मांस खाते हैं, ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। अब ये दूसरा मैटर है समझने का कि एक बार राक्षसों ने किसी को अटैक कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करने लगे, तो बड़ी जल्दी उसके प्राण तो चले जाएंगे, बाकी उसका अब रह गया पार्थिव शरीर, अब उसके कितने भी टुकड़े करें किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, तो फिर इसमें दर्द कहां है, दर्द कहां है। और उससे भी पहले प्रश्न है, शरीर तो मैं यहां छोड़ के जाने वाला हूं, शरीर तो मैं इस धराधाम पे छोड़ के जाने वाला हूं, तो वो क्या मेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े करेंगे, नहीं। तो हर आत्मा को यातनाएं भोगने के लिए एक शरीर मिलता है, यातना शरीर। वो शरीर जैसे कि ये हमारा शरीर है, देखा जाए तो ये शरीर क्या, ये तो पंच महाभूत है, पंच महाभूत में से आया है, कल को पंच महाभूत में चला जाएगा। तो अगर कोई इस शरीर को कष्ट दे तो क्या शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को होता है, आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता, कौन बोला, प्रभु जी कहते हैं आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। अगर आत्मा को कष्ट नहीं होता और शरीर को कष्ट होता है तो क्या आप आत्मा हो या शरीर, जब कोई मारे आपको तो आपको कष्ट क्यों होता है, कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है, कोई ग्रंथों का सार नहीं है। सार वो होता है जो हमारे गुरु हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब ग्रंथों का अध्ययन गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किया हुआ है। हम क्या जानते, हम तो खुद कुछ नहीं जानते, बताता हूं शांति भगवान। अभी आप या तो आत्मा हो या शरीर हो, उसके अलावा भी कोई तीसरी चीज है, सूक्ष्म शरीर है, अच्छा, मन को कष्ट हुआ तो वो फील किसको हो रहा है? तो आत्मा को एक शरीर मिलता है, यातना शरीर। ये जो शरीर है इसको कष्ट होता है, लेकिन वो फील होता है आत्मा को, क्योंकि जैसे ही इसमें से आत्मा निकल जाए, अब इस शरीर को आप कोड़े कोड़े मार लो, जलाते भी हैं हम, तो कौन सा शरीर जलाने पे खड़ा हो जाता है कि भाई बहुत गर्मी हो गई, दूर करो इसको, अब एसी ऑन करो, क्योंकि वो तो अब पार्थिव शरीर है, उस शरीर को कोई कष्ट नहीं होने वाला। तो आत्मा इस शरीर में रहती है और इस शरीर की एक लिमिटेशन है, कितना कष्ट ये शरीर सहन कर सकता है। उससे ज्यादा शरीर, इस शरीर को कष्ट मिले तो ये शरीर के अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म है, आत्मा उसको छोड़ जाएगी। एक डिग्री तक ये शरीर कष्ट सहन कर सकता है। कुछ ऐसा बताया साइंटिस्ट लोगों ने कि 48 यूनिट्स ऑफ पेन ये शरीर सह सकता है, और उसके बाद पास आउट हो जाएगा। स्त्री का शरीर 52 यूनिट्स, 52, 48 पुरुष तो 52 स्त्री, 52 के बाद स्त्री भी गई, उससे ज्यादा दर्द और पीड़ा स्त्री भी सह नहीं सकती, वो भी। तो ये जो यातना शरीर है, इसका कष्ट भोगने का जो लेवल है वो बहुत हाई है। उसके आप टुकड़े 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 करते जाओ, वो प्राण नहीं निकलेंगे उसके, उसके प्राण नहीं निकलेंगे, केवल कष्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारे क्या होता है, कभी अगर किसी को याद हो कि जीवन की सबसे बड़ी भयंकर चोट किसी शरीर के किसी अंग को लगी थी, याद है किसी को? बहुत ज्यादा बड़ी चोट जब लग जाए तो वो एरिया सुन्न सा हो जाता है, डेड सा हो जाता है, नम सा हो जाता है। जितना बड़ा वो घाव दिखता है उतना ज्यादा दर्द नहीं होता, देख देख के दर्द ज्यादा होता है कि ओ माय गॉड मुझे इतना सारा कट गया। क्यों? क्योंकि इस शरीर का कष्ट सहने का एक लेवल है, उससे ज्यादा कष्ट होने पे वो कष्ट की फीलिंग चली जाती है। तो कितना भी कष्ट आप शरीर को दोगे, फील होगा आत्मा को। भगवद गीता में बताया गया कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, इसको तलवार से काटा नहीं जा सकता। इसलिए बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि पत्थर की तरह कठोर होगी, इसीलिए इसको काटा नहीं जा सकता, पत्थर की तरह कठोर होगी, नहीं, बहुत सॉफ्ट है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि आत्मा को फीलिंग नहीं होती, आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा को जो सुख दुख है वो किसको फील हो रहे हैं? मन को अलग थोड़ी होता है आत्मा से, मन किसी और का है और आत्मा किसी और की है, मन और आत्मा वो सब एक ही सेट है ना, तीन चीज तो नहीं हो सकती कि मेरा मन वहां है मेरा आत्मा यहां है, नहीं। वो सब जब तक आत्मा देहधारी आत्मा है उसके साथ में मन बुद्धि और अहंकार साथ। अब आप लास्ट शब्द बोले हो, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक बिल्कुल चुप होके बैठना, ये क्लास है, एक शब्द नहीं सुनना मुझे। नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूं ये क्लास है, नहीं नहीं ये क्लास है, मैं आपको नियम बता रहा हूं, मैं आपको नियम बता रहा हूं। हाँ तो नरक में यातना भोगने के लिए ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो बहुत कष्ट सहन कर सकता है। सहन तो कर लेगा लेकिन फिर भी कष्ट तो कष्ट ही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कष्ट कष्ट नहीं है, कष्ट तो है, चाहे उसकी सहन करने की क्षमता बढ़ गई। इसलिए यहां बताया गया कि जिन लोगों का उन्होंने शिकार किया है वह राक्षस की तरह रूप धारण कर लेंगे और अपनी तेज तलवारों से इस आत्मा के उस यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे। जिस प्रकार इस लोक में नरभक्षकों ने नाचते गाते हुए अपने शरीर का रक्तपान किया, उसी तरह उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होंगे। यूजुअली किसी के को मार के उसका रक्तपान करने के समय वो जीव तो मर गया, वो नहीं देखता कि मेरा रक्तपान करके लोग नाच गा रहे हैं आनंदित हो रहे हैं। लेकिन ये लोग जो इस नरक में जाएंगे वो इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट काट के अब ये राक्षस लुकिंग लोग खा रहे हैं, चबा रहे हैं, रक्त पी रहे हैं हमारा और प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे एक कथा बहुत सालों पहले बताई जाती थी भारत के बारे में, हमारे नवेगंद्र स्वामी हैं उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति नरक से आके अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि नरक में गया तो वहां पे अलग अलग देशों के नरक बने हुए थे, तो सबके सोने का एक स्थान है, सुबह को उठ के जैसे लोग यहां पे सुबह को उठ के काम पे जाते हैं सुबह 8 बजे से शाम को 5-6 बजे तक ड्यूटी है जो कुछ भी है, तो वहां पे सुबह को उठ के लोग नरक भोगने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे नरक हैं, अमेरिका का नर्क है, रूस का नर्क है, जर्मनी का नर्क है, बहुत सारे नर्क, और इस तरफ बहुत बड़ा वाला वो भारत का नर्क है। तो ऑफ कोर्स भारत के नर्क में जरा ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, और ऐसे ही बहुत बड़ा चीन का भी नर्क है लेकिन वहां लाइन जरा जल्दी चलती है। तो लोग लाइन में खड़े हुए हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यहां कोई चेक करता आपका पासपोर्ट कि कौन से देश के नरक में आप खड़े हो, कि नहीं नहीं कोई नहीं चेक करता, कि आपने कभी ट्राई किया है? जीवन भर तो मैं जर्मनी जाने की कोशिश करता रहा लेकिन जर्मनी जा नहीं पाया, कि चलो जर्मनी का नर्क ही चेक कर रहा हूं। तो ये जो व्यक्ति जिससे पूछ रहा है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस था, काफी समय से नर्क में रह रहा था। तो उसने बताया, हां मैं जर्मनी का भी चेक कर आया हूं, रूस का भी चेक कर आया हूं, अमेरिका का भी चेक कर आया हूं, सबसे बेस्ट अपना इंडिया का है। कि क्यों, ऐसा क्यों है कि देखो आपका तो पहला दिन है, मैं आपको बताता हूं अंदर क्या होता है। अंदर आपको कीले लगे हुए बेड पे सुलाया जाएगा, लेटाया जाएगा और फिर रस्सियों से बांध दिया जाएगा, फिर ऊपर से पड़ेंगे कोड़े, उसके बाद आपको एक दूसरे बेड में ले जाया जाएगा जिसमें खूब जोर का करंट होगा, बहुत करंट लगेगा लेकिन आपके प्राण नहीं निकलेंगे, बहुत कष्ट होता है। और उसके बाद फिर आपको बड़े वाले राक्षस जो हैं वो बड़े वाले कोड़ों से खूब पीटेंगे। तो उसने क्या, तो बाकी के नरकों में क्या होता है कि सब जगह यही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भारत का नरक कैसे बेस्ट आप बता रहे हो फिर, जब कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर भारत का कैसे बेस्ट हुआ? कि देखो एक तो यार लाइन बहुत लंबी है, आधा दिन तो लाइन में ही बीत जाएगा, फिर अंदर जो किलो वाला बेड है उसकी कीले सारी घिस चुकी हैं। और जो अंदर करंट वाला बेड था वो ज्यादातर लाइट आती नहीं है। फिर अंदर जो बड़े राक्षस है जो मारने वाले, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बीच में चाय वाय पीने चले जाते हैं और आपको आगे कर देते चल दूसरा। इसलिए जाना है तो इंडियन नरक में जाओ। तो ये एक हास्य व्यंग की कथा है जो हमारे महाराज बताया करते थे। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो किसी का तो हम अभी ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन और कॉमेंट? ओके देन, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवताम की, निताय गौर प्रेमानंदे।